एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम अकेले में जैसे होते हैं, समूह में, भीड़ में वैसे क्यों नहीं रहते।
हाँ बिल्कुल, ये किताब है इलियास केनेटी की क्राउड्स एंड पावर, यानी जनमेदिनी और सत्ता। देखिए, ये लिखी तो गई थी 1960 में, पर आज भी
उतनी ही जरूरी लगती है ना, खासकर जब हम ये राजनीतिक रैलियां देखते हैं या फिर ऑनलाइन जो ट्रेंड्स चलते हैं, सामाजिक आंदोलन।
सही कहा, ये किताब जैसे आईना दिखाती है, और सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं, हमारे अंदर का भी, कि क्यों हम खिंचे चले जाते हैं ग्रुप्स की तरफ और कैसे कुछ लोग इस सामूहिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, केनेटी के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं आज के जमाने में।
हाँ, पर पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। इलियास केनेटी, ये कोई मतलब टिपिकल एकेडमिक नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बुल्गारिया में जन्मे 1905 में, और उनका परिवार सेफार्डी यहूदी था, मतलब उनकी पहली भाषा लादिनो थी, जो स्पेनिश से निकली है, फिर बल्गेरियाई, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, कितनी भाषाएं, कितनी संस्कृतियां।
कमाल है, और यही शायद उनके काम में झलकता भी है।
उन्होंने पढ़ी तो केमिस्ट्री थे, लेकिन उनका असली इंटरेस्ट तो साहित्य, फिलॉसफी और इंसानी फितरत को समझने में था।
जी, और उन्हें 1981 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो दिखाता है कि उनका नजरिया कितना गहरा और कितना व्यापक था।
और ये जो किताब है क्राउड्स एंड पावर, इसे लिखने में कहते हैं 30 साल से ज्यादा लगे।
हाँ, सोचिए जरा, ये कोई फटाफट लिखा गया सिद्धांत नहीं है, ये दशकों का निचोड़ है। उन्होंने वियना देखा, पहले विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद को करीब से महसूस किया, फिर लंदन में निर्वासन में रहे।
मतलब उन्होंने भीड़ की ताकत, नेताओं का वो करिश्मा, ये सब अपनी आंखों से देखा था।
बिल्कुल, इसीलिए उनकी बातें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं टिकी हैं, उन्होंने मिथकों, इतिहास, धर्म, यहाँ तक कि जानवरों के व्यवहार को भी कंगाला है। वो एक कवि की नज़र और एक मनोवैज्ञानिक की समझ से इस चीज को देखते हैं।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में, एक लाइन में कैसे बताएंगे?
अगर एक लाइन में कहूं तो ये दो ताकतों, भीड़ और सत्ता, इनके बीच का जो गहरा, जटिल और कभी कभी डरावना रिश्ता है, उसकी पड़ताल है। केनेटी मानते थे कि इन दोनों को समझे बिना हम इंसानी इतिहास या समाज को समझ ही नहीं सकते।
और शुरुआत कहां से होती है?
शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी एहसास से, अनजान के स्पर्श का डर। सोचिए ना, हम लिफ्ट में या बस में कैसे थोड़ा सिकुड़ जाते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, किसी अनजान का हाथ लग जाए तो अजीब सा लगता है, अपना एक दायरा होता है।
बिल्कुल, लेकिन केनेटी कहते हैं भीड़ में यही डर गायब हो जाता है।
गायब या कुछ और?
गायब ही नहीं, बल्कि उलट जाता है। लोग एक दूसरे से सटना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो सारे फर्क, वो ओहदे, वो पहचान, सब जैसे धुल जाते हैं। एक बराबरी का, एक मुक्ति का एहसास होता है।
अच्छा,
इसी को वो डिस्चार्ज कहते हैं, जैसे कोई बिजली का करंट दौड़ाओ और सारा बोझ उतर गया हो।
दिलचस्प। और फिर किताब का दूसरा हिस्सा, सत्ता।
हाँ, सत्ता। पर केनेटी के लिए सत्ता सिर्फ मतलब कुर्सी और ताकत का खेल नहीं है, ये ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। इसकी जड़ें हैं आदेश देने में।
आदेश?
हाँ, और उससे भी ज्यादा गहरी जड़ है जीवित बच जाने की भावना में। वो जो सर्वाइवर होता है ना, जो सबके मरने के बाद भी टिका रहे, शासक की असली ताकत शायद वहीं से आती है।
बाप रे, तो ये किताब हमें व्यक्ति के डर से उठाकर भीड़ की ऊर्जा और फिर सत्ता के इस क्रूर मनोविज्ञान तक ले जाती है।
बिल्कुल, ये उन अनदेखी ताकतों को समझने की कोशिश है जो हमारे समाज को, हमारी राजनीति को चलाती हैं।
चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। आपने कहा था इसमें पारंपरिक अध्याय नहीं है, बल्कि विचारों के हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा भीड़ वाला।
हाँ, भीड़। तो शुरुआत वही स्पर्श के डर से, और कैसे वो भीड़ में डिस्चार्ज यानी मुक्ति में बदल जाता है। फिर केनेटी भीड़ के कुछ गुण बताते हैं। पहला, कि भीड़ हमेशा घनी होना चाहती है।
घनी मतलब पास पास?
हाँ बिल्कुल, कोई दूरी नहीं चाहिए। दूसरा, भीड़ में एक कमाल की बराबरी होती है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं। तीसरा, भीड़ की हमेशा एक दिशा होती है, एक लक्ष्य। और चौथा, वो हमेशा बढ़ना चाहती है और लोगों को खींचना चाहती है अपने अंदर।
अच्छा, तो ये तो हुए भीड़ के गुण। क्या वो अलग अलग तरह की भीड़ भी बताते हैं?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं एक होती है खुली भीड़, जैसे कोई क्रांति की भीड़ या विरोध प्रदर्शन, वो बस फैलना चाहती है, उसकी कोई तय सीमा नहीं होती।
और दूसरी?
दूसरी है बंद भीड़, जैसे स्टेडियम में दर्शक या मंदिर में जमा लोग। इनकी एक सीमा होती है, इनकी अपनी पहचान होती है, और ये आसानी से बाहर वालों को घुसने नहीं देती।
ये तो समझ आता है, खुली भीड़ थोड़ी बेकाबू सी लगती है और बंद वाली ज्यादा व्यवस्थित।
हाँ, और शायद दोनों का एहसास भी अलग होता होगा। केनेडी और भी बताते हैं, लयबद्ध भीड़, जैसे सैनिक मार्च करते हुए, जहाँ ताल जरूरी है, और ठहरी हुई भीड़, जो किसी चीज का इंतजार कर रही हो, पर मूल बात वही है, व्यक्ति का भीड़ में घुल जाना।
ठीक है, भीड़ से पहले आपने कहा था केनेडी झुंड की बात करते हैं, द पैक, ये क्या है?
हाँ, झुंड। केनेडी मानते हैं कि ये भीड़ से भी पुराने हैं, छोटे समूह जिनका कोई खास मकसद होता था, शायद हमारे समाज का एकदम शुरुआती रूप।
अच्छा, भीड़ की तरह बेतरतीब नहीं?
नहीं, झुंड का एक लक्ष्य होता था, जैसे शिकारी झुंड, मिलकर शिकार करना। शायद यहीं से हमने सहयोग सीखा, बंटवारा सीखा। और युद्धक झुंड, जहां शिकार दूसरे इंसान होते थे, इससे शायद डिसिप्लिन आया। फिर एक बहुत दिलचस्प है, विलाप झुंड, किसी के मरने पर इकट्ठा होना।
विलाप झुंड?
हाँ, केनेडी सोचते हैं कि शायद यहीं से धर्म की शुरुआत हुई हो, जब मरे हुए लोग पूर्वज या देवता बन गए और समूह उनके नाम पर एकजुट होने लगा।
अरे वाह, ये तो बहुत ही मौलिक विचार है कि हमारी आज की बड़ी बड़ी संस्थाएं, सेना, धर्म, राष्ट्र, वो इन छोटे पुराने झुंडों से ही निकली हैं।
बिल्कुल, उनके वो मूल तत्व आज भी कहीं ना कहीं हैं। अब आते हैं एक और जबरदस्त विचार पर, आदेश की चुभन, द स्टिंग ऑफ कमांड।
आदेश की चुभन, कैसा नाम है?
है ना, केनेडी कहते हैं कि सत्ता का असली काम है आदेश देना, और जब किसी को मजबूरी में कोई आदेश मानना पड़ता है तो उसके अंदर एक चोट रह जाती है, एक चुभन।
चोट मतलब गुस्सा या
गुस्से से ज्यादा, ये अपमान है, बेबसी है, कंट्रोल छिन जाने का एहसास है। सोचे बचपन से अब तक कितने आदेश मानने पड़ते हैं, माँ बाप, टीचर, बॉस, सरकार। केनेडी कहते हैं ये चुभने हमारे अंदर जमा होती जाती है।
और फिर इन जमा हुई चुभनों का क्या होता है?
यही बात बहुत गहरी हो जाती है। केनेडी कहते हैं कि यही जमा हुई चुभने विद्रोह का बारूद बनती हैं। जब लोगों को मौका मिलता है किसी सत्ता के खिलाफ खड़े होने का, तो वो सिर्फ किसी पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे होते,
तो
वो उन सारी पुरानी चुभनों का हिसाब चुका रहे होते हैं, उन आदेशों से, उन आदेश देने वालों से आजादी चाहते हैं। ये विद्रोहों को एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब देता है।
वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है सत्ता और विरोध को देखने का। अब थोड़ा सत्ता के और अंदर झांकते हैं, सत्ता के अंतस्थल की बात की थी आपने, शासक का दिमाग, वो कैसे काम करता है?
केनेडी के हिसाब से शासक का सबसे बड़ा गुण, या कहें सबसे बड़ी समस्या है पैरानोया, गहरा शक, व्यामोह।
पैरानोया मतलब वो हमेशा डरा रहता है।
हाँ, उसे हमेशा लगता है कि खतरा है, साजिश हो रही है, दुश्मन चारों तरफ है, हर कोई उसकी गद्दी छीनना चाहता है।
लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हर शासक ऐसा होता है क्या?
केनेडी इसे समझाने के लिए जर्मन जज थे डैनियल पॉल श्राइबर, उनके केस को देखते हैं। श्राइबर को गंभीर मानसिक वहम थे, उन्हें लगता था कि भगवान की किरणें उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, वो किसी बड़ी लड़ाई के केंद्र में है।
अच्छा, तो श्राइबर से शासक का क्या लेना देना?
केनेडी कहते हैं कि श्राइबर की ये वहम एक तरह से सत्ता के मनोविज्ञान का मॉडल है। जैसे शासक जासूस रखता है, सक पर विरोधियों को मरवा देता है, बार बार वफादारी का सबूत मांगता है, ये सब उसी गहरे डर और शक से आता है। सत्ता बचाने के लिए शक करना उसकी जरूरत बन जाता है।
ये तो सत्ता का बहुत ही डार्क साइड है, और इससे भी डार्क शायद वो आखिरी आइडिया, उत्तरजीवी, द सर्वाइवर, ये क्या बला है?
देखिए, ये शायद केनेडी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा चर्चित तर्क है। वो कहते हैं कि सत्ता की सबसे गहरी, सबसे पुरानी इच्छा सिर्फ राज करना नहीं है।
तो फिर क्या है?
वो है जीवित बचना, सर्वाइव करना, खासकर तब जब बाकी सब मर जाएं, दुश्मन खत्म हो जाएं। सोचिए वो पल जब शासक लाशों के ढेर पर अकेला खड़ा हो। केनेडी कहते हैं वही है सत्ता का असली चरम बिंदु, जीत का असली नशा।
अरे बाप रे, मतलब दूसरों की मौत उसे अपनी ताकत का एहसास कराती है। ये तो बहुत भयानक है।
भयानक तो है, पर केनेडी कहते हैं इतिहास गवाह है। क्यों सुल्तान अपने भाइयों को मरवा देते थे? क्यों रोमन सम्राट ग्लैडिएटरों को मरते देख खुश होते थे, क्यों आज के तानाशाह नरसंहार करते हैं। कहीं ना कहीं ये उसी उत्तरजीवी बनने की इच्छा से जुड़ा है, और भीड़ भीड़ तो इस इच्छा को पूरा करने का सबसे अच्छा हथियार बन जाती है।
उफ, इस गहरी और थोड़ी हाँ परेशान करने वाली चर्चा के बाद चलिए कुछ मुख्य बातों को समेटते हैं। पहला बड़ा सबक क्या लगता है आपको?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है वो हमारे अंदर का विरोधाभास। एक तरफ अकेलेपन का डर, वो स्पर्श का डर, दूसरी तरफ भीड़ में घुल जाने की जबरदस्त इच्छा, वो डिस्चार्ज। ये समझना कि भीड़ हमें क्यों खींचती है, वो आज़ादी का नशा क्यों देती है, ये बहुत जरूरी है। आज की कनेक्टेड दुनिया में भी ये दिखता है।
और दूसरा?
दूसरा कि भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है, वो एक जीती जागती चीज है जिसके अपने नियम है। वो फैलना चाहती है, बराबरी चाहती है, और हाँ कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझना अधूरा है, इसके मनोविज्ञान को समझना होगा, चाहे वो सड़क पर हो या ऑनलाइन।
तीसरा वो आदेश की चुभन वाली बात, ये याद दिलाती है कि पावर का असर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होता है। हर रूल हर ऑर्डर हमारे मन पर एक निशान छोड़ता है। हमारे देश में जहां हायरार्की इतनी गहरी है, समाज में दफ्तरों में ये चुभन और उसका जमा होना बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल। चौथा वो उत्तरजीवी वाला सिद्धांत, ये वाकई आंखें खोल देता है। ये हमें सत्ता की क्रूरता समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। क्यों पावर स्ट्रगल इतना बेरहम हो सकता है, क्यों इतिहास में इतनी हिंसा हुई है। ये हमें नेताओं के बड़े बड़े दावों के पीछे की गहरी इच्छाओं पर सोचने को मजबूर करता है।
और पांचवा, सत्ता और पैरानोया का वो गहरा कनेक्शन कि कैसे शासक का शक पूरे सिस्टम को बीमार कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि जो लोग सत्ता में हैं उनके डर और असुरक्षाएं कितनी खतरनाक नीतियां बनवा सकती हैं।
किताब में वैसे सीधे सीधे कोट्स कम हैं, पर कुछ विचार इतने दमदार हैं कि वो याद रह जाते हैं। जैसे वो पहली बात,
हाँ, इंसान अनजान के स्पर्श से सबसे ज्यादा डरता है। भीड़ ही वो एकमात्र स्थिति है जहां ये डर अपने विपरीत में बदल जाता है। क्या लाइन है, अकेलेपन और समूह के खिंचाव का पूरा सार इसमें है।
और ये वाला, भीड़ के डिस्चार्ज में सारे भेद मिट जाते हैं और सभी इंसान बराबर महसूस करते हैं। ये बताता है कि क्यों लोग बड़े आंदोलनों या जलसों में वो अपनापन, वो एकता महसूस करते हैं, अपनी पहचान भूलकर एक बड़े समूह का हिस्सा बन जाना।
एक और गहरा विचार, हर आदेश एक चुबन छोड़ जाता है जो पलटवार का इंतजार करती है। ये सत्ता और विरोध का जो अंतहीन चक्र है उसे कितनी खूबी से बयान करता है।
हाँ, क्यों हर सत्ता को चुनौती मिलती है उसका एक मनोवैज्ञानिक जवाब यहाँ है, और अंत में वो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला। उत्तरजीवी का क्षण ही सत्ता का क्षण है। मृतकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उत्तरजीवी उतना ही महान होगा।
उफ, ये लाइन तो सत्ता के अंधेरे दिल को चीर कर रख देती है। इतिहास और आज की कितनी घटनाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है।
तो अब सवाल ये है कि इन भारी विचारों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं?
मुझे तो नहीं लगता। आप सोचिए ना, चुनावों में कैसी रैलियां होती हैं, कैसे नेता हम बनाम वो की कहानी बनाते हैं, एक दुश्मन खड़ा करते हैं और भीड़ को एकजुट करते हैं। कैनेडी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये तकनीकें काम कैसे करती हैं।
और सोशल मीडिया, वो तो जैसे डिजिटल खुली भीड़ का अखाड़ा है कि नहीं?
हाँ बिल्कुल।
कोई ट्रेंड शुरू होता है, लोग कूद पड़ते हैं, किसी को टारगेट किया जाता है, ऑनलाइन मॉबिंग होती है, और वहां भी वही बराबरी का भाव, हम सही है वाला भाव दिखता है। कैनेडी समझाते हैं कि ये गुस्सा, ये उग्रता कहां से आती है।
दफ्तरों में भी देख लीजिए, अगर कोई बॉस बहुत ज्यादा हुक्म चलाता है, सुनता नहीं है, तो वहां भी आदेश की चुभन जमा होती है। धीरे धीरे माहौल बिगड़ता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, नौकरी छोड़ते हैं।
सही बात है। और पर्सनल लेवल पर ये किताब हमें ग्रुप थिंक से सावधान करती है। सिर्फ इसलिए कोई बात मान लेना क्योंकि सब मान रहे हैं, या किसी ग्रुप में बने रहने के लिए अपनी सोच बदल लेना। कैनेडी हमें याद दिलाते हैं कि अपनी सोच, अपना विवेक बचाए रखना कितना जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए आखिरी टेकअवे क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी इस मॉडर्न रैशनल दुनिया के नीचे आज भी वो पुरानी शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं। भीड़ में खोने की इच्छा, सत्ता की भूख, जिंदा रहने की चाह, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, समझना ही होगा।
मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि कैनेडी ने कैसे इतने अलग अलग फील्ड्स, मिथक, इतिहास, साइकोलॉजी, बायोलॉजी सबको मिलाकर इंसान के बर्ताव की इतनी गहरी तस्वीर बनाई है। स्पर्श का डर, डिस्चार्ज, चुभन, उत्तरजीवी, पैरानोया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुनिया को देखने के नए लेंस बन जाते हैं। इनसे हम न्यूज़, पॉलिटिक्स, अपने आसपास के लोगों को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे जरूरी बात शायद वो चेतावनी है कि व्यक्ति भीड़ के सामने कितना कमजोर पड़ सकता है और सत्ता की भूख कितनी खतरनाक हो सकती है। ये हमें हमेशा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है, सवाल पूछना है।
बिल्कुल, ये किताब याद दिलाती है कि इंसान का स्वभाव जटिल है, उसमें अंधेरे कोने भी हैं, लेकिन उन्हें समझकर ही शायद हम एक बेहतर, एक ज्यादा जागरूक समाज की तरफ बढ़ सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए चित्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।